कई अस्थायी प्रवासियों ने कोविड-19 के दौरान कठिनाई का सामना किया है, जैसा कि यूनियंस न्यू साउथ वेल्स द्वारा किए गए एक हालिया सर्वेक्षण से पता चलता है। इसमें 87% ने बताया कि उन्हें अपने साप्ताहिक खर्च में कठिनाई हुई और 43% को नियमित रूप से भोजन प्राप्त करने में भी कठिनाई हुई। तो आज सेटलमेंट गाइड में कुछ ऐसी युक्तियों के ऊपर बात की जो इस समय उपयोगी साबित हो सकती हैं। वैसे बजट बनाना सामान्य समय में एक उपयोगी कौशल है, लेकिन राष्ट्रीय ऋण हेल्पलाइन से वित्तीय परामर्शदाता केन जॉनसन का कहना है कि अक्सर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और प्रवासी वर्कर्स के लिए एकमात्र लक्ष्य होता है महामारी में सर्वाइव करना।
We're getting a lot of calls from people who have no income at all and are just struggling to pay for day-to-day essentials such as food and rent and utilities and things like that.
मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत में यूनियंस न्यू साउथ वेल्स ने नो वर्कर लेफ्ट बिहाइंड सर्वेक्षण का आयोजन किया था, जिसमें 5,000 से अधिक अस्थायी वीजा धारक शामिल थे। इसमें पाया गया कि 87% जो उत्तरदाता थे उन्हें अपने साप्ताहिक खर्च का भुगतान करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। तो जॉनसन की सलाह है कि यदि कोई असमर्थ है तो उसे अपने बैंक से बात करनी चाहिए।
Your bank that your payments be put on hold because you're currently struggling financially and you don't have enough money for your day-to-day essentials, they are legally obligated to reasonably consider that request. And if you don't have any money coming in at all, putting those payments on hold for a period of time is a very reasonable request.
Unions NSW सर्वेक्षण के अनुसार 30% अस्थायी प्रवासियों के लिए अप्रैल के शुरू में किराए का भुगतान करने में मुश्किल हुई। किराएदारों की यूनियन ऑफ न्यू साउथ वेल्स की पॉलिसी एंड एडवोकेसी कोऑर्डिनेटर जेमिना मॉबरे की सलाह है कि आप अपने मकान मालिक को अपनी वित्तीय कठिनाइयों के बारे में बताएं।
Renters have been impacted by COVID-19 are being encouraged to seek a rent reduction from their landlord, and that could look like a rent waiver, so waiving a portion of the rent and just reducing it, or it could look like a deferred payment.
ऑस्ट्रेलिया में कुछ राज्य और टेरिटरी सरकारें वित्तीय तनाव के तहत घरों के लिए ऊर्जा भुगतान सहायता प्रदान करती हैं। सर्विस न्यू साउथ वेल्स $50 के एनर्जी अकाउंट्स पेमेंट असिस्टेंट वाउचर्स प्रदान करती है, जबकि विक्टोरियन यूटिलिटी रिलीफ ग्रांट स्कीम के तहत 2 साल की अवधि में प्रत्येक उपयोगिता प्रकार पर $650 की राहत अनुदान योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। यदि कोई वित्तीय संघर्ष में है तो जॉनसन की सलाह है कि अपने यूटिलिटी प्रोवाइडर से बात की जाए।
Your utility providers have hardship department. You can give them a call and request that they put the payments on hold or lower the repayment so you could go on a payment plan rather than paying your full bill. If you have the ability to pay a certain amount per fortnight, then you can request that as well.
Union NSW के सर्वेक्षण में पाया गया कि 65% अस्थायी प्रवासियों ने अप्रैल की शुरुआत में अपनी नौकरी खो दी थी। काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया के लिए राष्ट्रीय कल्याण अधिकारी कासुन कलहारा का कहना है कि भले ही अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को उनकी सेविंग और सुपरन्यूएशन निकालने की बात हुई, लेकिन वो फैक्टर अर्थव्यवस्था के लिए महामारी की क्षति में नहीं था। गृह मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र कोविड-19 के कारण जो अपनी मूल वीज़ा वैधता के भीतर पढ़ाई पूरी करने में असमर्थ हैं वो आगे के छात्र वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब चाहे फेडरल सरकार ने कठिनाइयों का सामना करने वाले लोगों को अपने सुपरन्यूएशन से पैसा निकालने के लिए कहा है, लेकिन जॉनसन का कहना है कि लोगों को ऐसा करने से पहले हमेशा वित्तीय सलाह लेनी चाहिए।
If you take out the $10,000 of your super, you're actually losing a lot more in the long run. But I understand that at the moment, if you don't have any income coming in at all and you need that money to survive, then it may be an option that you need to consider.
Australians को दो आवेदनों में superannuation fund को निकाल सकने की अनुमति है। एक था जून की 30 तारीख से पहले और दूसरा 31 दिसंबर से पहले। हालांकि जो अस्थायी प्रवासी हैं उन्हें 2019-20 वित्तीय वर्ष से पहले केवल एक ही बार सुपरन्यूएशन फंड को निकालने की अनुमति थी, लेकिन कुछ अन्य तरीके हैं जिनसे आप संभावित रूप से अपने सुपर तक पहुंच सकते हैं, तो इसके लिए नेशनल डेट हेल्पलाइन से सलाह करनी चाहिए। अच्छा, वित्तीय संकट में जो भारी जुर्माना होता है वो भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। लीगल एड न्यू साउथ वेल्स के वर्क एंड डेवलपमेंट ऑर्डर सर्विस की असिस्टेंट मैनेजर लिंडा मेंस बताती हैं।
We have additional laws, the public health order fines that are being imposed on people, which is about $1,000. So if people don't really speak English, we've seen, especially in central Sydney or in western Sydney, disproportionate amount of people have been imposed with these public health order fines.
New South Wales Work and Order Scheme 10 वर्षों से चल रही है, जिसमें 2000 से अधिक सामुदायिक संगठन शामिल हैं जो वॉलंटियर सर्विसेज या सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेने के माध्यम से जुर्माने की भुगतान कराने में मदद करते हैं। कुछ राज्य और टेरिटरीज भी इसी तरह की सेवा प्रदान करते हैं।
So anyone who's in acute economic hardship or who has a mental illness or other grounds of eligibility, they can do a WDO and can clear all the fines. There's no maximum and there's no minimum.
Coronavirus आर्थिक स्थिति के जवाब में Australian Financial Security Authority ने लेनदारों के लिए दिवालियेपन का अगर उन्हें नोटिस देना है तो उसके लिए आवश्यक ऋण की सीमा को बढ़ाकर $5,000 से $20,000 के बीच कर दिया है। लेकिन जॉनसन का कहना है कि दिवालियापन एकमात्र विकल्प नहीं है।
Bankruptcy is not an option that you should jump into without getting advice and weighing up all of your options. It's very common for us to get calls from people who are considering bankruptcy, but then after talking to us, they find that there are better options available to them that aren't going to have such long-lasting impact.
मुफ्त और गोपनीय वित्तीय परामर्श के लिए राष्ट्रीय ऋण हेल्पलाइन को 1-800-007-007 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय लीगल एड से भी सलाह ली जा सकती है। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।